ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी प्रभु प्रेमी, शांति प्रेमी, धर्म प्रेमी भाई बहनों का राजयोग के इस प्रथम सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम सब दुनिया के एकमात्र आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में बैठे हैं। अनेक प्रकार के विश्वविद्यालय हमने देखे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, लॉ कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, लेकिन ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है और स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है स्पिरिट इन रियलिटी, आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को जाने। हिंदी में कहते हैं आध्यात्मिकता, जिसका अर्थ है आत्मा का अध्ययन, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा की अनुभूति। हम सारा दिन में कई बार आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो अगर शब्द है तो जरूर वो चीज भी है। मेरी आत्मा को मत सताओ, मेरी आत्मा इस बात को नहीं मानती, मेरी आत्मा को ये अच्छा नहीं लगता, मेरी आत्मा बहुत तड़फी, तो ये शरीर का कोई अंग है क्या? क्या हमने कभी इसको देखा? नाम तो हम बहुत लेते हैं, दिन में कई बार लेते हैं, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, आत्मा की आवाज मत दबाओ। जरूरी नहीं कि जो चीज दिखाई दे वही हो। शरीर के बहुत सारे अंग हमें दिखाई नहीं देते, पर हम जानते हैं। ब्रेन दिखाई नहीं देता, लंग्स दिखाई नहीं देते, लीवर दिखाई नहीं देता, हार्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन कोई पूछे तो हम बता सकते हैं शरीर में उनका सिचुएशन कहाँ है। लेकिन क्या इतनी स्पष्टता से हम आत्मा के बारे में बता सकते हैं? जब एक छोटा बच्चा स्कूल जाने लगता है, कुछ ही दिनों में शरीर के अंगों के बारे में वो जान लेता है। और जब वो बच्चा बोलने लगता है दिस इज माई आई, दिस इज माई ईयर, दिस इज माई नोज, तो हम बहुत खुश होते हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेजी सीख गया। लेकिन क्या उस बच्चे ने ये बताया वेयर इज माई सोल? और क्या हमने उस बच्चे से पूछा वेयर इज योर सोल, आपकी आत्मा कहाँ है? ना हमने पूछा, ना बच्चे ने बताया, ना स्कूल में किसी ने बताया, और आत्मा नाम की चीज इग्नोर हो गई। जब यही बच्चा सुबह सो के उठता है तो हम इस बच्चे की आंखें धोते हैं, चेहरा धोते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि बच्चे की आत्मा को धोई? आत्मा फिर से इग्नोर हो गई। ये बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, घर से बाहर जाने लगा, हमने कहा बेटा तुम्हारे बाल उलझे हुए हैं, बालों को ठीक करो, शर्ट के बटन ठीक करो, जूते अच्छे वाले पहनो। लेकिन क्या हमने कभी कहा कि बेटा तुम बाहर जा रही हो, आत्मा उलझी हुई है, उसे सुलझा लो, आत्मा पे धूल पड़ी है, उसे साफ कर लो? ये आत्मा फिर इग्नोर हो गई। बच्चा और बड़ा हुआ, अब इतना बड़ा हो गया कि अपने कपड़े ठीक से पहन लेता है, और अगर खुद ना पहने तो बाजार में ऐसी दुकानें खुल गई हैं जिनमें पैसे देके बाहर की लुक ठीक की जा सकती है, और बच्चा उन दुकानों पे जाकर के बाल ठीक कराने लगा, कपड़े ठीक कराने लगा। लेकिन क्या कोई ऐसी दुकान हमने ढूंढी जिसमें इस आत्मा को ठीक किया जा सके? ये फिर इग्नोर हो गई, और ऐसा करते करते बच्चा बालिग हो गया, बहुत स्वस्थ भी है, सुंदर भी है, पढ़ा लिखा भी है, बाहर की लुक और सुंदर हो गई, लेकिन भीतर से आत्मा अधिक उलझ गई, अधिक मैली हो गई। तो आज हम देखते हैं कि जो समस्याएं हैं वो बाहरी नहीं है। आंख की समस्या तो कोई कोई को है, कान की समस्या किसी किसी को है, लेकिन आत्मा की, विचारों की, चिंतन की ये समस्या तो छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सभी को है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि आत्मा को ना जाना गया, ना पहचाना गया, ना उसकी चर्चा की गई, ना उसे संवारा गया, ना देखा गया और ना अनुभव किया गया। इसलिए इस विश्वविद्यालय ने आत्मा के ऊपर, परमपिता परमात्माओं, परमात्मा की शिक्षाओं को अनुभव करने के जो लेसन तैयार किए, उनकी चर्चा हम अभी करेंगे। हम जानते हैं मैं कौन हूँ, ये बहुत पुरानी पहेली है। मैं आपको वेदकालीन समय की एक घटना सुनाना चाह रही हूँ। ऋषि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, एक का नाम था मैत्री और एक का नाम था गार्गी। ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा कि मुझे आत्मा की अनुभूति करनी है, इसलिए मैं एकांतवास में जा रहा हूँ, और उन दोनों को कहा कि आप आधी आधी संपत्ति बांट लो और सुख से रहो। मैत्री तो सहमत हो गई, लेकिन गार्गी के मन में एक सवाल उठा कि इस संपत्ति को छोड़कर के जिस आत्म ज्ञान के लिए ये व्यक्ति जा रहा है, जरूर वो संपत्ति से ऊंची चीज है, तो मैं भी उस ऊंची चीज को लूंगी, छोड़ी हुई चीज को क्यों लूं? उसने कहा मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे भी आत्म ज्ञान चाहिए। याज्ञवल्क्य ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने कहा नहीं, कुछ भी हो मुझे आत्म ज्ञान की साधना करनी है। याज्ञवल्क्य को उसे अपने साथ रखना पड़ा। और आज हम जानते हैं कि वेदों की बहुत सारी ऋचाएं गार्गी की लिखी हुई हैं। गार्गी की याद में बहुत चीजें हम बनाते हैं, आज भी हमने उसकी यादगार को सहेज के रखा है। गार्गी आज नहीं है, लेकिन उसका आत्म ज्ञान आज भी लोगों का मार्ग प्रदर्शन करता है। हम उपनिषद के नचिकेता को याद कर लेते हैं। नचिकेता वारी सर्वा का बेटा था। एक बार उसके पिता ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, और यज्ञ में वो ब्राह्मणों को गऊ दान दे रहा था, लेकिन गौएं बूढ़ी थी। बच्चे ने कहा पिताजी, दान तो अच्छी चीज का किया जाता है, बूढ़ी गौओं का दान क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो हम देंगे वही वापस लौटेगा। पिता को छोटे बच्चे का बीच में बोलना अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने क्रोध में कहा कि मैं तुमको यमराज को दान में देता हूँ। उस जमाने में बच्चे अपने पिता के वचन को पूरा करते थे, और बच्चा ये कहकर घर से निकल गया कि मैं यमराज के पास जा रहा हूँ। कहानी में आगे ऐसे बताते हैं कि वो यमराज के द्वार पे जाके बैठ गया, द्वार बंद था। 3 दिन के बाद यमराज लौटे, एक छोटे बच्चे को द्वार पे बैठे देखा, बड़ी दया आई और पूछा कि तुम कितने दिन से बैठे हो। बोला 3 दिन से। तो कहा पहले तुम 3 वरदान मांगो। तो बच्चे ने पहला वरदान मांगा, मेरे पिता को माफ कर देना, उन्होंने बूढ़ी गवें दान में दी और क्रोध किया। दूसरा वरदान मांगा, मुझे आत्मज्ञान की अनुभूति कराओ। यमराज ने उसे बहुत समझाया, तुम हाथी मांगो, घोड़े मांगो, धन मांगो, आत्मज्ञान का क्या करोगे, अभी तो बहुत छोटे बच्चे हो, खाओ पियो मौज करो। लेकिन बच्चे ने कहा नहीं, मुझे आत्मज्ञान ही चाहिए। और जब यमराज ने बच्चे की सच्ची लगन देखी तो उन्हें आत्मा का ज्ञान मिला। तीसरा वरदान था, मुझे स्वर्ग देखना है। यमराज को उसकी वो भी इच्छा पूरी करनी पड़ी। आज हम नचिकेता को उसके आत्मज्ञान के कारण जानते हैं। और महात्मा बुद्ध, जिसके पास संसार का सारा ऐश्वर्य था, उन्होंने भी 6 साल की कठोर तपस्या के बाद वट वृक्ष के नीचे जो ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान भी आत्मज्ञान ही था। उसे महसूस हुआ कि सिद्धार्थ तो शरीर का नाम है, लेकिन मैं इस शरीर से भिन्न कुछ और हूँ। और जब ये ज्ञान हुआ तो वो बुद्ध बन गए, बुद्ध माना, जिसे बोध हो गया स्वयं का, आत्मा का। आज हम उसी आत्मज्ञान की अनुभूति के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमें नचिकेता की तरह से यमराज तक नहीं जाना, बुद्ध की तरह से 6 साल कठोर तप नहीं करना और गार्गी की तरह से घर बार छोड़ करके एकांतवास नहीं करना। हमें बहुत सरल तरीके से परमात्मा पिता के वरदान के रूप में आत्मज्ञान यहाँ मिलेगा, जिसे हम घर में रहते अपना कार्य व्यवहार करते अनुभव कर पाएंगे। भारत में एक ऋषि हुए हैं, महर्षि हुए हैं, जिनका नाम था महर्षि रमण। महर्षि रमण जब 12 साल की आयु में थे तो उनके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। घर के लोग रोने लगे। बच्चे ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? परिवार के लोगों ने बताया, आपके पिताजी चले गए, इसलिए हमें बहुत दुख है, बच्चा घर से बाहर गया। कुछ लोगों के बीच में सफेद चादर ओढ़े हुए कोई लेटा था। बच्चे ने चादर उठाई, मुख देखा और मुस्कुराता हुआ घर के अंदर गया। घर के लोगों को कहा कि रोवो मत, मैं बाहर देख के आया हूँ, पिताजी चादर ओढ़े आराम कर रहे हैं। घर के लोगों ने कहा, बेटा वो पिताजी नहीं है। बच्चे ने कहा, मैंने चादर उठा के देखा, पिताजी का ही चेहरा था। घर के लोगों ने कहा, नहीं बेटा वो पिताजी नहीं थे, पिताजी तो ऊपर चले गए। और जब ये बात सुनी तो बच्चे ने एक सवाल पूछा, बहुत गहरा सवाल, इतना गहरा सवाल कि घर के लोग उत्तर नहीं दे पाए। और बच्चे ने सवाल पूछा कि मैं 12 साल से पिताजी को देख रहा हूँ, आज तक तो पिताजी एक ही थे, आज ये 2 कैसे हो गए, एक ऊपर गया और एक नीचे लेटा हुआ है। और बच्चे ने एक अगला सवाल पूछा कि अगर पिताजी दो हो गए, तो मुझे ये तो बताओ कि इनमें से असली कौन सा है। ऊपर गया वो असली पिताजी है या जो नीचे लेटा है वो असली पिताजी है। घर वालों ने तो उत्तर नहीं दिया, लेकिन क्या आप उत्तर देंगे? असली पिताजी कौन से हैं? कौन से हैं? जो ऊपर गए वो असली पिताजी हैं और जो नीचे लेटे हुए हैं वो नकली पिताजी हैं। सबकी लगभग यही राय है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि आप हर सुबह दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, वो चेहरा असली वाला है या नकली वाला है? कौन सा है? नकली वाला है। तो असली कब देखेंगे? किसी की आयु के 20 साल गुजर गए, किसी के 25, 40, 50, 60, इतना समय हमने नकली चेहरा देखते देखते गुजार दिया। असली की बारी आएगी? आज आ गई असली चेहरा देखने की बारी आ गई। आपके पास एक बहुत अमूल्य सोने की अंगूठी है। आप उस अंगूठी को इस पानी के गिलास की तरह यूं टेबल पे रख देंगे क्या? नहीं, उसे आप एक पर्स में डालेंगे, पर्स को आप एक अटैची में डालेंगे, अटैची को आप गोदरेज की अलमारी में डालेंगे, अलमारी के आगे आप ताला लगाएंगे कमरे में और फिर घर को भी ताला लगाएंगे। अंगूठी तक पहुंचने के लिए कितने दरवाजे पार करने पड़ेंगे? मकान का, कमरे का, अलमारी का, अटैची का, और उसके बाद पर्स खोला और अंगूठी भी एक डब्बी में है, तब जाके सोने की अंगूठी तक पहुंचे। तो जो मैं हूं वो भी तो बहुत अमूल्य हूं ना, और बहुत सारी परतों के अंदर हूं। जो बाह्य रूप दिख रहा है ये मैं नहीं हूं, ये तो आवरण है। उस अमूल्य आत्मा की सुरक्षा के लिए बाहर आवरण है और बाहर उसके नौकर चाकर हैं। आंख उसकी नौकर है जो किसी को देख करके अंदर समाचार देती है कि अमुक व्यक्ति आया है। कान भी उसका नौकर है जो सुन करके अंदर समाचार भेजता है। मुख भी उसका नौकर है जो उसकी तरफ से आए हुए समाचार को बाहर लोगों तक पहुंचाता है। लेकिन मालिक कहाँ है? वो अंगूठी की तरह अंदर लेयर में छिपा पड़ा है, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उसकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। अगर इस शरीर के किसी अंग का थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए तो मनुष्य जिंदा रह सकता है। इसलिए हमने देखा कि बिना आंख के भी लोग जिंदा हैं, बिना कान के भी लोग जिंदा हैं, बिना बोले भी लोग जिंदा हैं, बिना पांव के भी हो सकते हैं, बिना हाथ के भी हो सकते हैं, लेकिन आत्मा के बिना तो सबसे अमूल्य कौन हुआ? इसलिए वो दिखाई नहीं देती, वो बाहर नहीं रखी जाती। उस अमूल्य चीज को बहुत अंदर छिपा के रखा गया है। आज हम जानेंगे कि उस अमूल्य आत्मा का निवास कौन सा है। जब हमसे कोई पूछता है कि आप कौन हैं, तो बहुत करके हम कहते हैं मैं एक इंसान हूं, انسان کو انگریزی میں کہتے ہیں ہیومن بینگ. ہیومن شبد لیٹن بھاشا کے ہیومس شبد سے بنا ہے جس کا ارتھ ہے سوئل مٹی اور بینگ کا ارتھ ہے چیتنا. ہیومن بینگ میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے مٹی اور دوسرا ہے چیتنا. تو یہ شریر مٹی سے بنا ہے اور اس کے بھیتر ایک چیتنا ارتھات چیتنیہ شکتی وراجمان ہے جو اس شریر کو سنچالت کرتی ہے. تو ہیومن بینگ میں دو چیزیں ہو گئی, ایک شریر اور ایک آتما. شریر دکھائی دیتا ہے, آتما دکھائی نہیں دیتی. شریر چھوٹا بڑا بنتا ہے, آتما چھوٹی بڑی نہیں بنتی. شریر بنتا بھی ہے اور مٹتا بھی ہے, آتما نہ بنتی ہے اور نہ مٹتی ہے. شریر جوان بوڑھا بچہ ان اوستھاؤں میں سے گزرتا ہے, لیکن آتما سدا ایک رس ہے. شریر بھوتک سمپدا ہے اور آتما آدھیاتمک شکتی ہے. دونوں اپوزٹ ہیں لیکن دونوں کا ملن جیون ہے اور دونوں کا سپریشن مرتیو ہے. میں ان دونوں میں سے کون ہوں؟ آپ میں سے کوئی ایک کھڑا ہونا چاہے گا, ایک سوال پوچھوں گی. بھیا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کی آیو کتنی ہے؟ نام ہے ستیش بھائی, آیو ہے 43 ایئرس. آپ بھی اپنی اپنی آیو کو یاد کر لیجیے. میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہی ہوں, آپ سب سے بھی پوچھ رہی ہوں, آپ بھی اپنے من میں اس سوال کا اتر دینا. آپ کی آیو 43 ایئرس ہے, آج سے 44 ایئرس بیک آپ کہاں تھے؟ آپ سب بھی اپنے من میں اتر یاد کیجیے. جس کو اتر آئے وہ ہاتھ کھڑا کریں گے, پتا نہیں ہے. دوسرا سوال ہے, پتا نہیں ہے کہ میں کہاں تھا, لیکن کیا میں تھا یا تھا بھی نہیں, یہ بھی نہیں پتا. بیٹھ جائیے, دھنیواد. کسی کے پاس کوئی اور اتر ہے اس سوال کا؟ کھڑے ہو کے اتر دینا پڑے گا. ہاں جی, آپ کی آیو کتنی ہے؟ اوکے, تھینک یو, بیٹھیے. اور کسی کے پاس اتر ہیں؟ آپ کی آیو کتنی ہے؟ 43 ایئرس بیک آپ کہاں تھے؟ بیٹھیے. برہم لوک میں. تھینک یو, بیٹھیے. یہ جو 43 ایئرس آیو ہے, یہ کس کی ہے؟ تو کیا آپ شریر ہیں؟ آپ کون ہیں؟ اس کی آیو کتنی ہے؟ آیو کتنی ہے؟ تو ہم جب بھی اپنی آیو بتاتے ہیں, ہم کیا کہہ کر کے بتاتے ہیں, میں 30 سال کا ہوں, میں 40 سال کا ہوں, میں 50 سال کا ہوں. تو میں تو آتما ہوں, لیکن میں آیو کس کی بتاتا ہوں؟ اس کا مطلب میں نے شریر کو اور آتما کو دونوں کو ملا کر کے एक कर दिया। आयु शरीर की है, जन्म शरीर का हुआ है, मृत्यु शरीर की होगी। मेरी तो कोई आयु ही नहीं, मैं तो अकाल हूँ, काल से परे हूँ। इस शरीर के लेने से पहले भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। मैं 44 इयर्स बैक भी था, 45 इयर्स बैक भी था। जैसे हमारे यहाँ गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों का मॉडल होता है, 2003 मॉडल, 2004 मॉडल, 2005 मॉडल, बॉडी का भी एक मॉडल है। ये बॉडी 70 में आया, 75 में आया, 80 में आया, उससे पहले ये मॉडल नहीं था, लेकिन इसका ड्राइवर तो था, इसका मालिक तो था। तो शरीर अलग है और आत्मा अलग है, दोनों का भोजन अलग है, दोनों का स्वरूप अलग है, दोनों की आयु अलग है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न हैं। तो मैं कौन हूँ? आत्मा, जो मेटाफिजिकल हूँ, और शरीर फिजिकल है, विजिबल है, मॉर्टल है। आत्मा इमॉर्टल है, अनविजिबल है, मेटाफिजिकल है, दोनों अलग अलग है। आध्यात्मिक जगत की छोटी से छोटी इकाई आत्मा है और भौतिक जगत की छोटी से छोटी इकाई एटम है। एटम इज इक्वल टू आत्मा, स्पेलिंग में बस केवल ए का फर्क है। आत्मा में आप लिखेंगे ए टी ए एम ए, एटम में आप लिखेंगे ए टी ए एम। एटम भी दिखाई नहीं देता, आत्मा भी दिखाई नहीं देती, लेकिन भौतिक जगत में जो भी परिवर्तन होते हैं उनका आधार एटम, और एटम के भीतर तीन सूक्ष्म बल हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और इधर आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन, बुद्धि, संस्कार में जो संकल्प होते हैं उनके अनुसार चेतन जगत परिवर्तन होता है, और एटम में जो अंतर क्रियाएं होती है उनके आधार पे भौतिक जगत परिवर्तनशील है, और दोनों के मेल से ये जीवन बना है। कई लोग एक सवाल पूछते हैं कि आत्मा अगर दिखाई देती, दिखाई तो एटम भी नहीं देता, उसे हम सूक्ष्म दर्शी से देखते हैं, एक्सपेरिमेंट कर करके देखते हैं, और दिखाई आत्मा भी नहीं देती, लेकिन किसी ने सवाल पूछा कि अगर आत्मा दिखाई देती तो कितना अच्छा हो जाता, आध्यात्मिक साधना सरल हो जाती। लेकिन भाइयों और बहनों, आधुनिक युग में आत्मा ना दिखाई दे, हम सबका इसी में कल्याण है। आप कहेंगे क्यों? कारण ये है कि दिखने वाली हर चीज के साथ व्यक्ति छेड़छाड़ करता है। एक जमाना था जब लोगों को ये नहीं पता था कि शरीर में खून होता है, या खून दिया लिया जा सकता है, कोई जानकारी नहीं थी। मेडिकल साइंस इतना विकसित हुआ, हमें ये जानकारियां मिल गई, इसके बहुत फायदे हुए, लेकिन एक नुकसान ये हुआ कि कई लोग ब्लड का इलीगल बिजनेस करने लगे, ब्लड बैंक बन गए इलीगल, और ये भी एक नया क्राइम शुरू हो गया। साइड इफेक्ट है ये उस जानकारी का। इसी तरह से एक जमाना था जब लोगों को पता नहीं था कि शरीर में दो गुर्दे होते हैं, लेकिन जब से पता पड़ा फायदे भी हुए लेकिन नुकसान भी तो हो गए। अब देखिए गुर्दे बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, अंगों का इलीगल बिजनेस होता है ना, तो ये भी उस जानकारी का साइड इफेक्ट है। और एक जमाना था जब लोगों को ये नहीं पता था कि ऊपर से आने वाली आत्मा का कपड़ा मेल वाला कपड़ा है कि फीमेल वाला कपड़ा। शरीर तो कपड़ा है, लेकिन जब से विज्ञान ने ये जानकारी देनी चालू की तब से जिनका फीमेल वाला कपड़ा होता है उनका जीना ही दुभर हो गया। हुआ ना ऐसा? तो ये भी समाज में एक नया क्राइम पैदा हो गया। और मान लीजिए शरीर के भीतर आत्मा दिखने लग जाती तो विज्ञान क्या करता, विज्ञान के माहिर लोग क्या करते? हो सकता है आत्माएं भी निकाली जाती, बेची जाती, खरीदी जाती, और फिर क्या होता, कहती हैं मृत्यु के सामने सब बराबर है, वो बराबरी भी खत्म हो जाती। जिनके पास पैसे की ताकत होती उनकी आत्मा कभी निकलती नहीं, और जिनके पास ताकत होती नहीं शायद उनकी आत्मा कभी बचती नहीं। तो क्या विचार है आपका, आत्मा दिखनी चाहिए? क्या विचार है, दिखनी चाहिए? दो चीजें कभी नहीं दिखेंगी, एक आत्मा और एक परमात्मा इन भौतिक आंखों से, क्योंकि ये दोनों ही आध्यात्मिक सत्ताएं हैं। इन्हें हम अनुभव करते हैं, देखते नहीं है। अंग्रेजी का एक सुंदर सा शब्द है रियलाइज। रियलाइज में दो शब्द हैं, रियल माना वास्तविक, आईज माना आंखें। वास्तविक आंखें अर्थात रियलाइज करना, आत्मा को हम रियलाइज करते हैं, अनुभव करते हैं। इन भौतिक आंखों से तो बहुत कम दिखाई देता है। देखो आपको पीछे का दिखाई नहीं दे रहा, इस हॉल से बाहर का भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो ज्ञान की आंख है, भीतर की आंख है, प्रज्ञा चक्षु है, वो बहुत दूर दूर का, काल से परे, स्थान से परे, अनलिमिटेड चीजों को देख सकती है। तो आज हमें परमात्मा से वो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है जिससे हम आत्मा को देख सके, अनुभव कर सके। भीतर के नेत्र की हम अनुभूति करेंगे और उसी से आत्मा की भी अनुभूति करेंगे। आप चित्र में देख रहे हैं पांच तत्वों के शरीर को, और उसमें जब आत्मा का प्रवेश हुआ तो एक बहुत सुंदर व्यक्ति बन गया। इस व्यक्ति की आंखों में चमक है, इस व्यक्ति के चेहरे पे रौनक है, लेकिन जब तक आत्मा नहीं थी तब तक ये कैसा था, डरावना। तो ये रौनक किसकी है, ये आत्मा के प्रकाश की है। जैसे आप लोग अपनी दुकानों पे साइन बोर्ड लगाते हो और उसके अंदर की तरफ एक ट्यूब होती है, जब ट्यूब जलती है तो साइन बोर्ड बहुत सुंदर लगता है, और जब ट्यूब नहीं जलती तो साइन बोर्ड कैसा लगता है। तो ये बिना आत्मा का शरीर भी ऐसा ही है जिसमें आत्मा की रोशनी नहीं है, इसलिए ये भद्दा है, डरावना है। और जैसे ही आत्मा रूपी ट्यूब फिट हुई, चेहरा रोशन हो गया, तो इस शरीर में जो आकर्षण है, जो ब्यूटी है, वो आत्मा की है। जिस दिन आत्मा चली जाएगी ना इसमें ब्यूटी है, ना इसमें आकर्षण है और ना ही ये छूने योग्य है। आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज में जब तक लाइट है उसमें रखी सारी चीजें फ्रेश, और अगर लाइट चली गई तो सब चीजें बदबूदार हो जाती है। शरीर भी आप एक फ्रिज की तरह ही समझो, जब तक आत्मा रूपी लाइट जल रही है तब तक इसमें ब्लड ठीक ठाक है, हृदय ठीक ठाक है, गुर्दे ठीक ठाक है, लेकिन जैसे ही ये लाइट चली जाती है इसके भी सब अंग बदबूदार हो जाते हैं। मान लीजिए हमारे घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति है, हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टर साहब ये हमारे दादाजी हैं, हमारा इनसे बहुत प्रेम है, थोड़ा इन्हें डायग्नोस कीजिए, देखिए, पैसे की चिंता नहीं करना, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दीजिए। डॉक्टर दादाजी को लेके अंदर गए और जैसे ही अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लगा के उनकी चेकिंग करने लगे, संयोग ऐसा बना कि दादाजी वहीं से अगली यात्रा पे चले गए। तो डॉक्टर बाहर आया और हमें कहता है, सॉरी भाई साहब, आप डेड बॉडी को ले जाइए। अब सवाल ये है कि हमने तो डॉक्टर साहब को दादाजी दिए थे और डॉक्टर साहब हमें ये नहीं कह रहे हैं अपने दादाजी को ले जाइए, ऐसे कहेंगे डॉक्टर साहब? क्या कहेंगे? डेड बॉडी को ले जाइए। वो ये क्यों नहीं कह रहे कि दादाजी को ले जाइए? दादाजी कहाँ गए? डॉक्टर जी की दुकान से। दादाजी कौन थे? हम उस डेड बॉडी को लेकर के घर आ गए और बच्चा स्कूल से आया, बच्चा पूछता है दादाजी कहाँ है, दादाजी कहाँ है, और बच्चा कोशिश करता है कि मैं दादाजी को छूं, लेकिन हम उसको मना कर देते हैं, बेटा हाथ मत लगाना, नजदीक मत जाना, तुमको नहाना पड़ेगा। बच्चा पूछता है, सुबह तो मैं दादाजी की गोद में बैठा था, तब तो मुझे नहाना नहीं पड़ा, अब क्यों नहाना पड़ेगा? क्या उत्तर है इस सवाल का? बच्चे को हम क्या बताएं? दो परिवर्तन हो गए, एक तो डॉक्टर साहब ने हमें ये नहीं कहा कि अपने दादाजी को ले जाओ, और दूसरा हम बच्चे को भी छूने नहीं दे रहे हैं क्योंकि नहाना पड़ेगा। इसका मतलब दादाजी कौन थे? जो शरीर के भीतर विराजमान सत्ता थी, दादाजी का प्रेम उसमें था, दादाजी जैसा स्नेह वात्सल्य उसमें था। बॉडी में ना स्नेह है ना वात्सल्य है, ये तो आवरण है। और जैसे ही वो आत्मा निकल गई, शरीर के भीतर बैक्टीरियाज ने इतना तीव्र विघटन शुरू किया कि सब कुछ बदबूदार हो गया। अब अगर इसको छुएंगे तो हम भी अशुद्ध हो जाएंगे। तो ये शरीर कब तक शुद्ध है? जब तक इसमें मैं आत्मा मौजूद हूं, और मेरे जाते ये अछूत हो जाता है। अगर हम किसी शव यात्रा में जाते हैं तो वापस आके हमें नहाना पड़ता है, क्योंकि बिना आत्मा के शरीर बदबू से भर जाता है। तो ये बॉडी की ब्यूटी किसके कारण है? ये आत्मा के कारण है। मैं कौन हूँ? मैं वो अजर अमर आत्मा हूँ और मुझ आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। ये अंदर ही अंदर क्रिया करती हैं। चित्र में आप देख रही हैं, पहली शक्ति दिखाई है मन। मन माना सोचने वाली शक्ति, अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं माइंड। कई बार हम मन और मस्तिष्क को एक कर देते हैं। स्कूल में हम बच्चों से पूछते हैं, पढ़ाई कौन पढ़ता है, मेमोरी किसमें है? तो बच्चे कहते हैं मस्तिष्क में। फिर हम पूछते हैं, अच्छा एक डेड बॉडी में मस्तिष्क होता है? बच्चे कहते हैं होता है। तो क्या डेड बॉडी में मेमोरी होती है? होती है क्या, आप बताइए? तो मस्तिष्क में अगर मेमोरी होती तो डेड बॉडी में मस्तिष्क होता है, मेमोरी भी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं होती, इसका मतलब मेमोरी कहाँ है? मेमोरी मस्तिष्क के बजाय मस्तिष्क के अंदर मौजूद माइंड में है। मस्तिष्क तो बहुत बड़ा है, लगभग 900 ग्राम का, लेकिन इसके भीतर जो माइंड रूपी चिप है वो तो बहुत छोटी है। आत्मा की एक शक्ति है जो अति सूक्ष्म है, मेमोरी तो उसमें है। एक बार किसी ने कहा कि देखिए विज्ञान कितना एडवांस हो गया, उसने सब संतंत्र बनाया, उसने रक्त संचरण तंत्र बनाया, किसी व्यक्ति को ठीक से सांस ना आए तो आर्टिफिशियल सांस ले ले, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से ना हो तो आजकल आर्टिफिशियल हार्ट भी लगा देते हैं। लेकिन क्या विज्ञान ने चिंतन तंत्र बनाया, व्यक्ति के भीतर से आत्मा निकल गई और उसमें वो चिंतन तंत्र डाल दो और वो सोचने लगे, बनाया? तो ये मन वो चिंतन करने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, जिसे ना कोई बना सकता है ना कोई मिटा सकता है। ये इस शरीर से पहले भी था, आत्मा की एक शक्ति है, आत्मा के साथ रहता है। और वैज्ञानिक आजकल मन के ऊपर बहुत शोध कर रहे हैं। नॉर्मली मन एक मिनट में लगभग 30 विचार पैदा करता है। अगर ये गति से अधिक हो जाए तो मन तनावग्रस्त, अवसादग्रस्त हो जाता है, और अगर ये गति घट जाए तो मन एक संत का मन बन जाता है, एकाग्र मन बन जाता है, महान मन बन जाता है। राजयोग के द्वारा हम अपने मन के विचारों की गति को कम कर लेते हैं, दिशा दे लेते हैं, पॉजिटिव बना लेते हैं, जिससे हम महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, पवित्र आत्माएं बन जाते हैं। कई बार मनुष्य अपने मन से दुखी हो जाता है और कहता है, हे भगवान, मेरा ये मन ना होता मैं बहुत सुखी होता, ये मुझे बहुत परेशान करता है, बहुत सोचता है, हे भगवान मेरे मन को ठीक करो, ये बहुत फालतू बातें सोचता है। लेकिन मेरा घर मैं ठीक करती हूँ, मेरे कपड़े मैं ठीक करती हूँ, मेरा ऑफिस मैं ठीक करती हूँ, मेरी सारी चीजें तो मैं ठीक करती हूँ, तो मेरा मन भी किसको ठीक करना है? वो भी मुझे ही ठीक करना है। मन मेरा है तो मेरी चीजों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, और इसीलिए इस मन को ठीक करने के लिए परमात्मा ने हमें एक शक्ति दे रखी है, और उस शक्ति का नाम है बुद्धि, वो भी आत्मा की ही एक शक्ति है। जब हम धरती पर आए तो हमें मन के साथ बुद्धि भी मिली। बुद्धि माँ है और मन बच्चा है। जब बच्चा चंचलता करता है तो माँ उसे समझाती, बच्चा जब रास्ता भटकता है तो माँ उसे मार्गदर्शन करती है, बच्चा जब हताश निराश होता है तो बुद्धि उसमें आशा भरती है। लेकिन इसके लिए बुद्धि का स्ट्रोंग होना बहुत आवश्यक है। जैसे एक शक्तिशाली माँ बच्चे को अच्छी दिशा देती है, अगर माँ ही कमजोर हो और बच्चा उस पे हावी हो जाए फिर दिशा नहीं मिल सकती। मान लीजिए हम बाजार में जा रही हैं और बाजार में आजकल संतरे का जूस, किन्नी का जूस बहुत मिलता है, हमें कोल्ड है, डॉक्टर ने दवा दे रखी है, ठंडी और खट्टी चीज खाने से मना किया है और दो दिन के बाद हमारा इंटरव्यू है, डॉक्टर ने स्ट्रॉन्ग दवा दे रखी है ताकि मैं दो दिन में ठीक हो जाऊं, लेकिन जैसे ही किन्नू का जूस देखा मन में विचार आया कि मुझे जूस पीना है। ये विचार किस में आया? किसी भी चीज को देख के जो स्पॉन्टेनियस थॉट पैदा होता है ये मन में आता है, एकदम देखते ही प्रतिक्रिया आई, विचार आया, ये मन है। लेकिन जब मन ने कहा मुझे जूस पीना है तो बुद्धि ने कहा नहीं पीना। दो दिन के बाद इंटरव्यू देने के बाद दो गिलास तीन गिलास पी लेना, मन ने कहा नहीं एक गिलास पीने से कुछ भी नहीं होता, पीना ही है। बुद्धि ने कहा नहीं नुकसान तो एक गिलास के आधा गिलास भी करेगा, नहीं पीना। किसी को नहीं मालूम कि उस व्यक्ति के भीतर कौन सा युद्ध चल रहा है, लेकिन चल तो रहा है। अब देखते हैं कौन जीतता है। अगर मन बहुत ताकतवर है, मन बहुत चंचल है, बहुत उपद्रवी है, तो किसकी बात मान ली गई? मन की बात मान ली गई। और मन की बात मानी तो इसको हम क्या कहेंगे? दोनों को मिलाओ क्या बन गया? दोनों शब्दों को मिलाओ, मनमानी। मन की बात मानी, मनमानी की, किन्नू का जूस पिया, कोल्ड बढ़ गया, बुखार भी चढ़ गया और हम दो दिन के बाद इंटरव्यू नहीं दे पाए, हमारी 6 महीने की मेहनत बेकार चली गई। इसका कारण कौन है? मनमानी। और मान लीजिए हमने बुद्धि की बात मानी, संतरे का या किन्नू का जूस नहीं पिया, बुद्धि की बात मानी, इन शब्दों को भी मिला दो, बुद्धि मानी, और हमने बुद्धि मानी कि जूस नहीं पिया, हम ठीक हो गए, इंटरव्यू दिया, हमें जॉब मिल गई, हमारी मेहनत सफल हो गई, ये कैसे हुआ? बुद्धिमानी। मनमानी अच्छी या बुद्धिमानी अच्छी? हम अधिकतर क्या करते हैं, दुनिया में जितने भी दुख हैं उनका कारण क्या है? रोग हैं, जितने भी तनाव है, अवसाद है, अपराध है, घर घर में झगड़े हैं, उनका कारण क्या है? मनमानी। तो हमें जीतना किसको है? मनमानी को जीतना है, मन के ऊपर अंकुश लगाना है, ताकि अपराध खत्म हो, झगड़े खत्म हो, रोग खत्म हो, शोक खत्म हो, गंदगी खत्म हो, और मन के ऊपर बुद्धि जीत पाए, इसके लिए बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है। और बुद्धि को शक्तिशाली कैसे बनाएंगे? किसी ने एक हंसी की बात सुनाई कि बादाम खाने से इतनी बुद्धि नहीं आती जितना धोखा खाने से आती है। लेकिन भगवान धोखा खाने की बात नहीं कहते, भगवान कहते हैं बुद्धि शक्तिशाली बनती है ज्ञान के द्वारा। जितना जितना हम ज्ञान सीखेंगे, ईश्वरीय ज्ञान हमारे भीतर जाएगा, ज्ञान बुद्धि की खुराक है। जितना हम ज्ञान की बातों को अंदर ही अंदर मनन करते हैं, घुमाते हैं, स्मरण करते हैं, उतनी बुद्धि शक्तिशाली बनती है। और जब बुद्धि रूपी माँ शक्तिशाली है तो मन रूपी बच्चा मनमानी कर नहीं सकता। इसलिए सबसे पहला ज्ञान यही है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। ज्ञान का ये पहला पाठ हमें बार बार मन में स्मरण करना है, लिखना है, एक दूसरे को सुनाना है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जैसे ही हम ये चिंतन करते हैं मैं शुद्ध आत्मा हूँ, हमारे भीतर जैसे सफाई हो जाती है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये ज्ञान की पहली बात है और इससे बुद्धि शक्तिशाली बनेगी। मैं भी आत्मा हूँ, सामने वाला भी आत्मा है। सामने वाला ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ये तो आवरण है। इस आवरण के भीतर एक शुद्ध आत्मा विराजमान है। मैं भी ना मेल हूँ, ना फीमेल हूँ, ना बूढ़ा हूँ, ना जवान हूँ, मैं भी एक शाइनिंग स्टार हूँ। बार बार इस संकल्प को मन में रिपीट करेंगे तो बुद्धि शक्तिशाली होगी, और एक शक्तिशाली बुद्धि आपके जीवन को इतनी सुंदर दिशा देगी, आपका जीवन बुद्धिमान का जीवन बन जाएगा। और तीसरी चीज है संस्कार। मन और बुद्धि मिलकर के जो भी कर्म करेंगे वो हमारे संस्कार बनेंगे। मान लीजिए हमने एक बार मन की बात मानी, किन्नू का जूस पिया, तो संस्कार पड़ गया, हम फिर उसकी तरफ आकर्षित होंगे, फिर वही काम करेंगे, फिर वही काम करेंगे। इसलिए किसी ने कहा कि धागों से बना रस्सा तोड़ना मुश्किल और संस्कार जो बन गया उसे छोड़ना मुश्किल। गलती एक बार नहीं करते, हम बार बार करने को मजबूर होते हैं। और इसी प्रकार से अच्छा काम एक बार नहीं करते, उसको भी हम बार बार करते हैं, क्योंकि अच्छाई या बुराई हमारा संस्कार बन जाती है। संस्कार कई प्रकार के हैं, एक पिछले जन्म के आत्मा के साथ आते हैं। पिछले जन्म में हमने वो काम अगेन एंड अगेन किया था और उस संस्कार की छाप इतनी पक्की लगी कि शरीर छूटा लेकिन संस्कार नहीं छूटा, वो आत्मा के साथ आ गया। आप अपने चारों ओर ऐसे कई एग्जाम्पल देखते हैं। एक छोटा बच्चा है, बाल्यकाल से बंदूक से खेलता है, बंदूक चलाना अच्छा लगता है, बंदूक के सिवाय कोई खिलौना नहीं लेता है। अवश्य ही पिछले जन्म में ये बच्चा सेना में था, बंदूक चलाई थी, बंदूक चलाने का इतना गहरा संस्कार उसके भीतर है। कई बच्चे आपने देखे होंगे बाल्यकाल से संगीत प्रेमी हैं, संगीत सुनते हैं, बजाते हैं और पढ़ाई में भी संगीत लेना चाहते हैं। अवश्य ही पिछले जन्म का कोई गायक वादक है, इस जन्म में संस्कार साथ आया है। कई बच्चे बाल्यकाल से ध्यान लगाते हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति की बातों में इतनी रुचि रखते हैं, अवश्य ही पिछले जन्म का कोई संत या कोई भक्त शरीर छूट गया लेकिन संस्कार साथ ले आया। दूसरी प्रकार के संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। घर में माता पिता को बच्चा रोज एक काम करते देखता है, रोज देखता है और देखते देखते उनकी नकल करने की कोशिश करता है और फिर वही उसका संस्कार बन जाता है। अपवाद भी होते हैं इसमें, लेकिन मेजॉरिटी हम देख करके सीखते हैं। माँ बाप में अच्छी आदतें हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, भक्ति करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो बच्चे देख देख के अपने आप सीख जाते हैं। और माँ बाप में अगर इससे भिन्न आदतें हैं तो बच्चे उन भिन्न आदतों को भी देख देख करके सीख जाते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और माँ बाप उन्हें फ्रीडम दे देते हैं, बच्चे अपने मित्रों के संस्कार सीख जाते हैं। कई बार बहुत अच्छे घर का बच्चा मित्र के संग में आकर के गलत आदतें सीख जाता है, भले ही ये आदतें माँ बाप में नहीं थी, लेकिन इसको कहते हैं संग का रंग। और उस कुसंग के रंग में भी कई बार बच्चे कुसंस्कारों में आ जाते हैं, ये भी एक कारण बनता है। और जैसे कुसंग के संस्कार आ जाते हैं, अच्छे संग मिलने पे बच्चों में अच्छे संस्कार भी आ जाते हैं। और एक संस्कार है हमारे ओरिजिनल संस्कार, भगवान ने जब हमें धरती पर भेजा तो हमें वो संस्कारों की पोटली देकर के भेजा। आपका बच्चा भी जब घर से बाहर जाता है, आप कहते हैं बेटा ये कुछ पैसे रख लो, कुछ सामान रख लो, काम आएगा। भगवान ने हमें इतनी लंबी यात्रा पर भेजा तो आत्मा में 7 मूल संस्कार देकर के भेजा, जो आत्मा की मूल प्रॉपर्टी है, हम उन्हें लेकर के आए थे। एकदम प्योर संस्कार, उसमें सबसे पहला है ज्ञान। ज्ञान से जीवन में आती है पवित्रता। जहां पवित्रता है वहां शांति है। प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस। और जहां शांति है वहां प्रेम है। जहां प्रेम होगा वहां सुख मिलेगा। सुख की चरम सीमा को हम आनंद कहते हैं। और जहां ये 6 है वहां 7वां शक्ति अपने आप आ जाता है। तो ये आत्मा के 7 मूल गुण है जिनके कारण हम आत्मा को सतोगुणी कहते हैं। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। एक छोटे बच्चे को देखिए, 6 महीने का बच्चा पालने में झूल रहा है, ध्यान से देखिए उसके पास ये 7 चीजें भरपूर मात्रा में है। उसके पास पवित्रता कितनी है, मन कितना निर्मल है। कहते हैं बच्चा भगवान का रूप है। जैसे भगवान का चित्त निर्मल है, बच्चा भी निर्वैर है, राग नहीं, द्वेष नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं। क्या उस 6 महीने के बच्चे को ये अहंकार होता है कि मैं मिनिस्टर का बेटा हूँ कि कलेक्टर का बेटा हूँ, क्या उसमें क्रोध होता है, क्या उसमें लोभ होता है, उसे सोने की मोहर पकड़ाओ तो भी फेंक देगा। न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, 100% प्योरिटी, पीस, शांति कितनी है। क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति भी उसके सामने आए तो उसकी मुस्कान को देख करके उसका क्रोध भी उड़ जाता है। बच्चे के पास कोई हथियार नहीं, बच्चे के पास कोई बल नहीं, किसी को डरा नहीं सकता, मार नहीं सकता, लेकिन उसकी शांति से किसी का क्रोध मिट जाता है, किसी का लोभ खत्म हो जाता है। और बच्चे के पास प्रेम कितना है, सबको प्रेम करता है, उसको मालूम नहीं कि घर में किसकी उसकी माँ से बनती है, किसकी नहीं बनती है, वो सब से प्रेम करता है, सबकी गोदी चढ़ता है, सबको देख के मुस्कुराता है। खुशी कितनी है, उसे ये नशा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी कोठी का मालिक हूँ, डिग्री का नशा भी नहीं है, सुंदरता का नशा भी नहीं है, लेकिन उसकी मुस्कान, उसकी किलकारियां, उसकी खुशी घर के सब लोगों में खुशी भरती है। तो ये सातों चीजें लेकर के वो बच्चा धरती पे आया, ये आत्मा के मूल गुण है, ये मेरी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है। और जब हम धरती पर आए तो हमारी मुट्ठी बंद थी, हमने इनको कस के पकड़ रखा था, धीरे धीरे मुट्ठी खुलती गई और परमात्मा की दी हुई ये दौलत बिखरती गई और इसकी जगह दूसरी चीजें लेती गई। ज्ञान की जगह ज्ञान आ गया, पवित्रता की जगह अपवित्रता आ गई, शांति की जगह शांति आ गई, प्रेम की जगह नफरत आ गई, खुशी की जगह दुख आ गया, सुख की जगह संताप आ गया, शक्ति की जगह आत्मा कमजोर हो गई। और फिर हमने क्या किया, फिर हम रोज प्रार्थना में कहने लगे, हे प्रभु सुख दो, शांति दो, शक्ति दो, इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो वो दाता पूछता है, पहले दी थी वो कहाँ गई, और हम उसको कहते हैं प्रभु जो पहले दी थी वो तो खो गई, दोबारा दे दो। तो भगवान कहते हैं बेटा तेरे को तो खोने की आदत पड़ जाएगी, तू संभालना सीख। इसलिए मांगने से ज्यादा महत्वपूर्ण है संभालना, और संभालने की विधि क्या है, आप धन को कैसे संभालते हैं। आपकी पॉकेट में 1 लाख रुपया पड़ा है, आपका हाथ बार बार कहाँ जाता है, पॉकेट की तरफ, पर्स है कि नहीं, इसको कहते हैं धन की संभाल। तो शांति की संभाल भी ऐसे ही करनी होती है, बार बार ध्यान भीतर जाए शांति है कि नहीं, शांति कहीं खो तो नहीं गई, मेरे पास मेरी शांति है कि नहीं, किसी को देख के मेरी शांति उड़ तो नहीं गई, किसी बात को सुन के मेरी शांति चली तो नहीं गई, किसी का चेहरा देख के मेरी शांति कम तो नहीं हो गई, किसी कर्म को देख करके मेरी शांति खर्च तो नहीं हो गई। आप धन को भी तो ऐसे ही संभालते हो ना, पैसा कितना खर्च हुआ, 1 लाख में से कितना खर्च हुआ, ज्यादा तो नहीं खर्च हो गया। तो पैसा पड़ा है जेब में और शांति पड़ी है कहाँ, कहाँ शांति कहाँ पड़ी है, शांति है आत्मा में, आत्मा का गुण है, आत्मा में उसका निवास है। तो जैसे हम बार बार जीव की तरफ ध्यान देते हैं, हमें बार बार आत्मा की तरफ ध्यान देना है। शांति चली तो नहीं गई, सुख चला तो नहीं गया, आनंद कम तो नहीं हो गया, प्रेम खत्म तो नहीं हो गया, मेरी शक्ति क्षीण तो नहीं हो गई। अच्छा मान लो लगता है कि शांति क्षीण हो गई, लगता है तो क्या करी? तो परमात्मा ने बताया शांति क्षीण हो गई तो शांति को पुनः फूल भरने के लिए चिंतन करो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। धन कमाने से आता है, बचाने से बढ़ता है, और शांति चिंतन से आती है। जितनी बार आप ये चिंतन करेंगे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति भरती जाएगी, भरती जाएगी, भरती जाएगी। जैसा चिंतन वैसा जीवन, यद ध्यायति तद भवति। और आत्मा का निवास स्थान भ्रुकुटी है, दोनों नेत्रों के बीच, जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और भाई तिलक लगाते हैं, ये आत्मा का निवास है। आत्मा इस शरीर और इंद्रियों की संचालक है, आत्मा राजा है, बाकी सब उसके कर्मचारी हैं, दरबारी हैं, मंत्री हैं, दूत हैं। तो आप सब देखते हैं दरबार में बैठने का एक प्रोटोकॉल होता है, तो राजा कहाँ बैठेगा? दरबार में राजा का सिंहासन कहाँ होता है? सबसे ऊंचा होता है ना। शरीर का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है जहां हम आत्मा को बिठाएं? कई लोग कहते हैं आत्मा यहाँ होती है, ऐसा कहते हैं कई लोग, लेकिन ये तो बहुत नीचे की जगह हो गई। राजा इतना नीचा कैसे बैठेगा? इससे ऊपर तो आंख हो गई, कान हो गए, मुख हो गए, हाथ भी इससे ऊपर रह गए। इसलिए राजा का सिंहासन सबसे ऊंचा चाहिए। और जहां हम इशारा करते हैं आत्मा यहाँ है, यहाँ तो दिल है, दिल को अंग्रेजी में हार्ट कहते हैं, हिंदी में हृदय भी कहते हैं। ये भी एक मुट्ठी नुमा अंग है जो सारा दिन रक्त संचरण का काम करता है। और आजकल तो हार्ट की ट्रांसप्लांटेशन हो जाती है आदमी वाला बंदर में और बंदर वाला आदमी में। अगर आत्मा यहाँ रहती होती तो वो तो बंदर में चली जाएगी फिर, लेकिन ब्रेन की ट्रांसप्लांटेशन नहीं होती। इसलिए आत्मा का निवास स्थान दोनों नेत्रों के बीच भ्रुकुटी में है, हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नजदीक। हाइपोथैलेमस इस शरीर की मास्टर ग्लैंड है, उसके बिल्कुल नजदीक आत्मा का निवास है। आत्मा के चिंतन का असर हाइपोथैलेमस पर आता है और उससे कनेक्टेड सभी ग्रंथियों पे आता है। इसलिए आत्मा जैसा सोचती है शरीर का उस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आजकल डॉक्टर कहते हैं 100 में से 90 बीमारियां साइकोसोमेटिक, अर्थात पहले आत्मा में आती हैं फिर शरीर में आती हैं। अगर आत्मा का चिंतन शुद्ध रहे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और चित्र में आप नीचे देख रही हैं एक गाड़ी है। ये गाड़ी इसलिए दिखाई है कि आप सब जन्मजात गाड़ी के मालिक। कई लोग कहते हैं हम गाड़ी खरीदेंगे, कई लोग कहते हैं गाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन आप चित्र में देखिए परमात्मा ने आपको जन्मते ही एक बहुत सुंदर गाड़ी दी है। ये शरीर एक बहुत सुंदर बहुत महंगी गाड़ी है, इसकी कीमत कितनी होगी? इसकी कीमत हम आंक सकते हैं? इसके एक एक पुर्जे की कीमत कितनी होगी? आंख की, कान की, नाक की। एक अमूल्य गाड़ी हमें जन्म जात मिली है। तो गाड़ी और ड्राइवर दोनों अलग अलग होते हैं। आप देखिए, गाड़ी को हम डीजल या पेट्रोल देते हैं, लेकिन ड्राइवर को तो भोजन खिलाते हैं ना। मान लीजिए हमने गाड़ी को डीजल या पेट्रोल से फुल कर दिया और ड्राइवर को भोजन खिलाना भूल जाए, तो वो गाड़ी को ठीक से चलाएगा क्या? भूखा कैसे चलाएगा? चलाएगा तो दुर्घटना होगी। एक कमजोर ड्राइवर गाड़ी को संभालेगा कैसे? इसलिए दोनों को अच्छी खुराक चाहिए। और यही बात अगर हम मानव जीवन पे लागू करें तो शरीर हो गई गाड़ी, इसको हम कितनी बार भोजन खिलाते हैं? सुबह उठे, इसका ख्याल किया, पानी पिया, किसमें गया? गाड़ी में गया। चाय पी, जो भी हम सुबह से शाम तक भोजन लेते हैं, पीते हैं, फल खाते हैं, मेवा खाते हैं, जो भी, वो तो हम इस गाड़ी की संभाल कर रहे हैं, वो भी जरूरी है। इस संभाल का ही तो परिणाम है कि जब हम जन्मे तो ये गाड़ी 2.5 किलो की थी, लेकिन हमारे संभालते संभालते आज ये कितना केजी हो गई। ये हमने इसकी संभाल की तभी तो ये इतना बड़ा बना। लेकिन जितना इस गाड़ी की संभाल जरूरी है, उतना इसके मालिक की संभाल भी तो जरूरी है, इसके ड्राइवर की संभाल भी तो जरूरी है। तो इस गाड़ी का ड्राइवर कौन है? आत्मा। अच्छा, उसको हम 24 घंटे में कितनी बार खिलाते हैं? जब उसकी बारी आती है तो कई लोग कह देते हैं फुर्सत नहीं है। शरीर की बारी आती है तो फुर्सत निकल आती है, लेकिन आप सब लक्की हैं, क्योंकि आपने जो ये समय निकाला है ये ड्राइवर के लिए निकाला है, इसलिए अपने लिए आप ताली बजा सकते हैं। आप सब उन तमाम आत्माओं से भाग्यशाली हैं जो आत्मा के लिए, ड्राइवर के लिए, ड्राइवर को खुराक खिलाने के लिए इतना लंबा सफर तय करके आई हैं। शरीर को भोजन तो आप वहां भी दे सकते थे, आप उसके लिए नहीं आए, आप आत्मा को भोजन देने के लिए आई हैं। आपने समय निकाला, अपनी छुट्टी ली, व्यवसाय को छोड़ा, माताओं बहनों ने घर किसी को संभलवाया, बच्चे छोड़े। आत्मा की खुराक आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो आप सब बहुत बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, ये आत्मा का भोजन है। और शरीर को हम दिन में 5 बार खिलाते हैं, कई बार तो 6 बार 7 बार भी हो जाता है। अच्छी बात है, अच्छा खिलाएंगे तो स्वस्थ रहेगा, लेकिन संतुलन चाहिए। तो यहाँ देखिए, आत्मा को भी 5-6 बार खाने को मिलेगा। सुबह 1 बार आत्मा को भोजन मिला, मेडिटेशन किया आप सबने, अब दोबारा मिल गया, 10 बजे फिर मिलेगा, उसके बाद फिर मिलेगा, शाम को भी 2-3 बार मिलेगा। तो यहाँ इतना सुंदर संतुलन होगा, शरीर को भी पूरी खुराक और आत्मा को भी पूरी खुराक, और उस संतुलन का परिणाम क्या निकलेगा? आप खूब मुस्कुराएंगे, आप कहेंगे मजा आ गया, इतनी शांति, इतना अच्छा, इतनी स्वच्छता। तो ये कब हुआ? जब दोनों को बराबर खुराक मिली। लेकिन जब हम घर में होते हैं तो क्या होता है? संतुलन बराबर नहीं रहता, एक का पलड़ा झुक जाता है, एक का पलड़ा उठ जाता है। शरीर का पलड़ा झुक गया फिर हम क्या कहते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, शांति नहीं है, जी घबरा रहा है, मन भारी हो रहा है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। उसका कारण संतुलन बिगड़ गया। हम कपड़े पहनते हैं तो मैचिंग देखते हैं ना, ऊपर का कपड़ा जैसा हो वैसा ही नीचे वाला हो। तो जीवन में भी मैचिंग चाहिए, शरीर और आत्मा की मैचिंग। शरीर जितना स्वस्थ हो आत्मा भी उतनी ही स्वस्थ चाहिए। शरीर की जितनी पालना हो आत्मा की भी उतनी पालना चाहिए। शरीर जितना ब्यूटीफुल बनाए आत्मा की ब्यूटी का भी उतना ही ध्यान रखे। तो इस मैचिंग से क्या होगा, हम बहुत सुंदर बन जाएंगे, अंदर और बाहर दोनों तरफ से ब्यूटीफुल बन जाएंगे। तुमने आत्मा के बारे में कितनी बातें जानी, ये बुद्धि की खुराक है। इसे एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहले बात हमने जानी हम कौन है, हम शुद्ध आत्मा हैं। आत्मा का स्वरूप कैसा है, स्टार लाइक, स्टार माना सितारा, आसमान में चमकता हुआ सितारा। ये भी बुद्धि का भोजन है। दो चीजें याद हो गई, तीसरी चीज आत्मा का निवास कहाँ है, भृकुटी, और चौथी चीज आत्मा की तीन शक्तियां कौन कौन सी हैं, हमें किसको शक्तिशाली बनाना है, मन बुद्धि संस्कार में से किसको ताकतवर बनाना है। और बुद्धि ताकतवर कैसे बनेगी, बादाम खाने से, धोखा खाने से, कैसे बनेगी, ज्ञान से, ज्ञान रत्नों को धारण करने से बुद्धि शक्तिशाली बनेगी। और आत्मा का भोजन कौन सा है, आत्मा को हमें क्या खिलाना है, विचार, ज्ञान, जो हम सुन रहे हैं अभी, ये आत्मा का भोजन है। और आत्मा भोजन खाएगी तो बहुत शक्तिशाली बनेगी। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हम जानेंगे कि आत्मा इस शरीर में आई कहाँ से। जैसे मैं आपसे पूछूं आप कहाँ से आए, आप कहेंगे हम हिमाचल से आए, जहां से भी आप आए, अलग अलग स्थानों से आए, लेकिन उस स्थान पर आप कहाँ से आए। फर्ज करो आप मनाली से आए, मनाली में आप कहाँ से आए, जब कोई पूछता है, नॉर्मली हमसे पूछता है कि इस दुनिया में आप कहाँ से आए, तो हमारा इशारा किधर जाता है, इशारा ऊपर की तरफ जाता है कि हम वहां से आए। वहां से कहाँ से, उस जगह का नाम क्या है, कितनी बड़ी है, वहां कौन कौन रहते हैं, कितनी फैसिलिटीज हैं, इन बातों का पता है क्या। सिर्फ इशारा कर देते हैं कि उधर से आए, लेकिन उधर का नाम भी तो होगा कुछ। तो चित्र में आप देखेंगे तीन लोग, एक नीचे का लोक है जिसमें नीला रंग है, ये हमारा अपना लोक है, इसमें सूरज, चांद, सितारे और ग्लोब दिख रहा है। देखो ये कितना बड़ा विश्व है, ये ग्लोब उसी का चित्र है। इतने बड़े विश्व में हमारा भारत देश और भारत में ये राजस्थान और राजस्थान में ये आबू रोड शहर और उस शहर में ये शांतिवन में हम बैठे, ढूंढो इसमें आप कहां बैठे हो। तो ये ग्लोब साकार दुनिया में है, माना ये हमारी दुनिया साकार लोक है, इसमें सूर्य है, चांद है, भूलोक, द्यूलोक, पाताल लोक सब यही है। और ये रंगमंच है बहुत बड़ा, इस रंगमंच के ऊपर हम 750 करोड़ आत्माएं पार्ट प्ले कर रही है, दुख सुख का पार्ट, हानि लाभ का पार्ट, जन्म मृत्यु का पार्ट सब यहाँ चलते हैं। इसको कहते हैं जगत निरंतर गतिशील, सरती इति संसार, जो निरंतर सरकता रहता है, कभी रुकता नहीं, टिकता नहीं। ये साकार लोक है, जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, निरंतर परिवर्तनशील। और इसके ऊपर तीन देवताओं की पुरी है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। इसमें ये पांचों तत्व नहीं है, इसलिए ये इन आंखों से दिखाई नहीं देती। वैज्ञानिकों की पहुंच केवल 5 तत्वों तक है। और ये बीच की पुरी जिसे हम सूक्ष्म लोक कहते हैं, सूक्ष्म देवताओं की पुरी, इसके ऊपर आप लाल सुनहरी प्रकाश का लोक देख रही हैं, उसका नाम है परम धाम। तो जब हम उंगली से कहते हैं कि हम वहां से आए, तो हम इस परम धाम की ओर इशारा करते हैं। और इस परम धाम में छोटी छोटी स्टार लाइक बिंदी आप देख रहे हो, ये हम सब वहां बैठे हैं, वो हमारा असली घर है। तो फिर दुनिया क्या है? अगर वो घर है तो आज हम जहां बैठे हैं वो क्या है? घर तो एक ही होता है ना, बाकी टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन जैसे कहते हैं भाई बाप दादा का घर, तो वास्तव में वो हमारा ओरिजिनल घर है, हमारे बाप दादा का घर है, परमात्मा का घर है। और जहां इस दुनिया में हम रह रही हैं, ये रंगमंच है, रंगमंच, रंगमंच, रंगशाला, नाटकशाला, जहां व्यक्ति अलग अलग कपड़े पहन करके अलग अलग नाटकों में भाग लेता है। तो जब हम अपने पिता के घर में थे, परम धाम में थे, तो हमारे पास ये कपड़ा था ही नहीं, था क्या? वहां देखो आत्मा बिंदी बिंदी बैठी है, ज्योति बिंदु आत्माएं बैठी हैं, परमात्मा पिता के आसपास हम सब ज्योति बिंदु आत्माएं बैठी हैं। वहां ना शरीर था, ना शरीर के संबंधी थे, ना कोई काका चाचा मामा था, ना घर था, ना दुकान थी, ना फैक्ट्री थी, केवल आत्मा थी। और आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित थी, इसलिए उस लोक का नाम है शांति धाम। आत्मा वहां शांति स्वधर्म में है, और वहां शांति का सागर परमात्मा हमारे पास है। फिर क्या हुआ? उस शांति के लोक से हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की और इस रंगमंच पर आ गए। रंगमंच पर आते ही हमको एक कॉस्ट्यूम मिला, ड्रेस मिली, और उसको पहन करके हम मेल फीमेल, बूढ़ा जवान बच्चा कुछ भी बन गए। और इस ड्रेस को पहन के हम खेलते जा रही हैं, खेलते जा रही हैं। तो ये खेल है, जीवन एक खेल है, खेल समझ कर खेलो। और असली घर परम धाम है, उसको कभी मत भूलो। बच्चा जब खेलता है तो उसे घर तो याद रहता ही है ना, कि खेल पूरा होने के बाद मुझे अपने घर जाना है, तो हम भी यहाँ खेलने आई हैं, तुमको याद तो रहना चाहिए ना कि खेल पूरा होने के बाद हमें अपने घर जाना है। नहीं याद रहना चाहिए क्या? चाहिए। और अगर बच्चा घर को ही भूल जाए तो क्या होगा? जब मेला होता है ना, तो छोटे बच्चे को माँ सुबह सुबह नहलाती है, नए कपड़े पहनाती है, काला टीका लगाती है और बाप की उंगली पकड़ा देती है, जाओ बच्चे को मेले में ले जाओ। अब बच्चा खुशी खुशी पिता के कंधे पे चढ़ के मेले में जाता है, गुब्बारे देखता है, बंदर का मदारी का तमाशा देखता है, झूले पे झूलता है, मिठाई खाता है, बड़ा मजा आता है। लेकिन जैसे जैसे मेले में भीड़ बढ़ती है, इतनी भीड़ बढ़ी, धक्का लगा, मुक्का लगा और बच्चे की उंगली बाप से छूट गई और बच्चा सबके पैरों तले आने लगा, पुकार रहा है, पिताजी पिताजी, रो रहा है, लेकिन भागते लोग दौड़ते लोग उसकी आवाज ही नहीं सुन रहे। अगर कोई दया करके उसे गोदी में उठा भी लेता है तो बच्चा देखता है ये तो मेरा बाप नहीं है, उसको खुशी नहीं मिलती। कोई जलेबी खिलाना चाहता है वो खाता नहीं। जो सुबह सब कुछ अच्छा लग रहा था, अब कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि बाप की उंगली छूट गई और घर कहाँ है बच्चा जानता नहीं है। तो मेला उसके लिए झमेला बन गया। तो जब हम भगवान के घर से आए थे तो भगवान ने भी हमें सुंदर ड्रेस पहना के गुणों की और बहुत प्यार से इस रंगमंच पे भेजा था, जाओ बेटा खेलो खाओ मजे करो, मेला है वो बहुत सुंदर। लेकिन इस मेले में खेलते खेलते दो बातें हो गई, एक तो हम भगवान को भूल गए, बाप की उंगली छूट गई, और दूसरा अपने घर को भी भूल गए। तो ये मेला हमारे लिए क्या बन गया? झमेला बन गया। अब भगवान कहते हैं बच्चे मेरी उंगली फिर से पकड़ो, अपने घर को याद करो, तुम इस दुनिया में सदा नहीं रहोगे, तुम मेहमान हो, ये बार बार अपने मन को पक्का कराओ, मुझे अपने घर वापस जाना है अपना खेल पूरा करके। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, नाम लिए जा काम किए जा, ना काहू का डर है और इस दुनिया में सभी मुसाफिर, ना काहू का घर है। हम सब मुसाफिर और हमारा वो परम धाम, प्यारा धाम, अपना धाम, जिसे हम स्वीट होम भी कहते हैं, निर्वाण धाम भी कहते हैं, शिवपुरी भी कहते हैं, शिवलोक भी कहते हैं, ब्रह्मलोक भी कहते हैं, इसमें ये लाल सुनहरी रंग का ब्रह्म नाम का तत्व प्रीवेलेंट है, फैला हुआ है और ये अपरिवर्तनीय तत्व है। धरती पे पांच तत्व परिवर्तनशील है, लेकिन उस लोक का जो ब्रह्म तत्व है अपरिवर्तनशील है। तो ब्रह्म तत्व का नाम है, इसलिए उस लोक का नाम पड़ गया ब्रह्म लोक, और उसमें हम चेतन आत्माएं रहती हैं। तो हमारा वो स्वीट होम है। तो पहले चित्र में आपने कई बातें जानी और इस चित्र में भी आपने कई बातें जानी। अब आपसे कोई पूछे आप कहां से आए तो क्या कहोगे? नाम पक्का हो गया ना अपने घर का, क्या नाम है? परम धाम। और उस परम धाम में कौन कौन रहते हैं? हम आत्माएं और हमारे साथ हमारा पिता परमात्मा। भगवान का घर किधर है? आपका घर ऊपर है, भगवान का कहाँ है? दोनों का घर एक ही है ना, बाप और बेटे का घर एक ही होता है। तो यहाँ भी पिता परमात्मा और हम सब उसके पुत्र एक ही घर में रहते हैं। और आत्मा का धर्म क्या है? शांति, ये जितने भी गुण है ये आत्मा का धर्म है। लेकिन हमें सबसे पहले क्या चाहिए? शांति। तो चलिए, हमने जितनी बातें जानी उन बातों के आधार पे हम राजयोग का अभ्यास करेंगे। कुछ घड़ियों के लिए इस मन को एकाग्र करेंगे। किसके ऊपर एकाग्र करेंगे? अपने आप पर एकाग्र करेंगे और अपने घर पर एकाग्र करेंगे। बिल्कुल स्थिर होके बैठ जाइए, कमर सीधी, हाथ में अगर आपने कोई भी चीज पकड़ी हो उसे छोड़ दीजिए, संपूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव कीजिए, क्योंकि आत्मा अपने मूल स्वरूप में पूर्ण स्वतंत्र है। ये लाल रोशनी इसलिए की गई है, आपको अपने घर की याद सहज आएगी, क्योंकि जो परम धाम घर है वहां की रोशनी भी लाल सुनहरी है। अपने ध्यान को अपने आप पर केंद्रित कर लीजिए, आप कौन हैं, कहां बैठे हैं, सवाल पूछिए अपने आप से, मैं कौन हूं, और स्वयं उत्तर दीजिए, मैं प्रकाशमान हीरा हूं, अति सूक्ष्म दिव्य कण हूं, आत्म ज्योति हूं, दोनों नेत्रों के बीच अकाल तख्त पर विराजमान हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, जल मुझे गला नहीं सकता, वायु मुझे सुखा नहीं सकती, अग्नि मुझे जला नहीं सकती। मैं इस शरीर को लेने से पहले भी थी, आज भी हूँ, और इस देह को छोड़ने के बाद भी रहूंगी। मैं शाश्वत आत्मा हूँ, सनातन हूँ, अजर अमर हूँ, मैं आत्मा एक सितारे की तरह भ्रकुटी में विराजमान हूँ, शरीर और इंद्रियों के मालिक हूँ। मन बुद्धि संस्कार मेरी सूक्ष्म शक्तियां हैं, तीनों मेरे नियंत्रण में हैं। शांति मेरा स्वधर्म है, मेरे चारों ओर शांति का प्रकाश फैला हुआ है। शांति मुझ आत्मा का मूल गुण है। शांति मेरी रचनात्मक शक्ति है। शांति का कुंड मेरे भीतर है। मैं इस दुनिया में शांति बांटने आई हूँ। मैं शांति दूत हूँ, शांति की देवी हूँ, शांति का फरिश्ता हूँ। मुझसे शांति के प्रकंपन चारों ओर प्रवाहित हो रहे हैं। धरती और आसमान में फैल रहे हैं। मैं शांति की दाता हूँ। शांति मेरी अमूल्य पूंजी है। शांति ही हीलिंग पावर है। संभाल करूंगी, इसे बचा कर रखूंगी, इसे बढ़ाती रहूंगी। मेरा असली धाम सूर्य चांद तारागण से भी पार, पांचों तत्वों से पार, लाल सुनहरी प्रकाश का धाम परम धाम है, जहां अखंड शांति और पवित्रता है। ये मेरा स्वीट होम है। यहाँ मैं आत्मा अपने आप को एक सितारे के रूप में देख रही हूँ। यहाँ मैं अपने मूल गुणों में स्थित हूँ। मेरे चारों ओर मेरे मूल गुणों का आनंद है। ये मेरा बेहद का घर है। न कोई दर, न दरवाजे, न पार्टीशन। ये मेरा अविनाशी घर है, मेरी अचल संपत्ति है। यहाँ मैं आत्मा असीम शांति का अनुभव कर रही हूँ। पिता परमात्मा की शांति की किरणें एक झरने की भांति मुझ पर उतर रही है। मैं उस शांति के झरने में डूबी हूँ। शांति की शक्ति अपने में समाती जा रही है। इस शांति की शक्ति को अपने में भर कर मैं आत्मा वापस साकार लोक के स्थूल शरीर में भ्रुकुटी में विराजमान हो रही। आज मैं सारा दिन इस शांति की शक्ति का दान दूंगी। शांति के साथ बोल चाल व्यवहार करूंगी। ओम शांति शांति।